नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजीव गांधी हत्याकांड के आजीवन दोषियों में से एक एजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया। पेरारीवलन उर्फ अरिवु 19 साल का था जब उसे 11 जून 1991 को गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप लगाया गया था कि उसने शिव रासन के लिए 2 9 वोल्ट गोल्डन पावर बैटरी सेल खरीदे थे। लिट्टे आदमी जिसने साजिश का मास्टरमाइंड किया था। उस साल 21 मई को राजीव गांधी की हत्या करने वाले बम में बैटरियों का इस्तेमाल किया गया था। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका लगा है। पार्टी के युवा नेता और कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने बुधवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वे पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे थे। उनका आरोप है कि पार्टी में उनके लिए अब कोई काम नहीं रह गया है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, कांग्रेस में मेरा हाल जैसे नए दूल्हे की नसबंदी करा दी गई हो। इस घटनाक्रम से पार्टी के अंदर मतभेद और गहरा गया है। बुधवार को उन्होंने ट्विटर पर अपने इस्तीफे को सार्वजनिक करते हुए लिखा, आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। हार्दिक पटेल ने इस्तीफा देने के थोड़ी देर बाद ट्विटर पर प्रोफाइल फोटो भी बदल लिया। उन्होंने वह फोटो लगा रखा था जिसमें कांग्रेस चुनाव चिन्ह पंजा भी साथ नजर आ रहा था, पर अब मौजूदा फोटो में वह हाथ बांधे नजर आ रहे हैं। सीबीआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंट और कार्ति चिदंबरम के करीबी सहयोगी एस भास्कर रमन को वीजा भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक देर रात कई घंटे की पूछताछ के बाद भास्कर रमन को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया, वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए हमें भास्कर रमन को गिरफ्तार करना पड़ा। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। भ्रष्टाचार से जुड़े ताजा मामलों में सीबीआई ने मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम ने चेन्नई, मुंबई, कोप्पल, झारसुगुड़ा, मानसा और दिल्ली में 10 ठिकानों पर तलाशी ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि पंजाब में एक बिजली परियोजना के लिए 300 चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। भारत में एक दिन में कोविड 19 के 1829 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,27,199 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 15,647 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 33 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,24,293 हो गई है। वहीं देश में कोविड 19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 15,647 रह गई है, जो कुछ मामलों का 0.04% है। पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 753 की कमी दर्ज की गई है। वहीं मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.75% है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दैनिक दर 0.42% और साप्ताहिक दर 0.57% है। ज्ञानवापी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है और इस पर राजनीति भी तेज होने लगी है। वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमीशन को जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय दिया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है। वहीं अब सुब्रमण्यम स्वामी ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ज्ञानवापी मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए कहा, ओवैसी ने कानून पढ़ा है और डिग्री भी हासिल की है। जब वह कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करना पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है, तो वह लोगों को गुमराह करते हैं। अधिनियम का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब कोई मस्जिद या मंदिर गिराया जाएगा, तभी इस अधिनियम का उल्लेख किया जा सकता है। यह अवैध नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में निर्देश दिया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय का ई श्रम पोर्टल, जो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को पंजीकृत करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंचने में मदद करने के लिए है, वो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार, हम PDS दुकानों से मासिक खाद्यान्न संग्रह के स्थान डेटा के आधार पर वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ ई श्रम के एकीकरण की प्रक्रिया में हैं। ये परिकल्पना की गई है। ई श्रम पर स्थायी पता डेटा के साथ स्थान डेटा की तुलना ई श्रम के भीतर प्रवासी श्रमिकों की पहचान करने में मदद करेगी। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भारत स्थित कार्यालय के प्रमुख संजय अवस्थी ने कहा, प्रवासी श्रमिकों का सबसे बड़ा नियोक्ता निजी क्षेत्र है और उसकी भागीदारी एक लंबा रास्ता तय करेगी। जन सहस के संस्थापक और सीईओ आशिफ शेख ने कहा, ई श्रम प्रणाली असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की एक सामाजिक रजिस्ट्री बनाने की कोशिश करती है। पंजीकरण पहला कदम है, उसके बाद सुरक्षा के माध्यम से कमजोरी को कैसे कम किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।